சங்கேன தஸ்மை குருவே மந்தா கல்பசர்வஸ்த கிருதா சிந்துப்யேவ ச பதிதானம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ மகாபதன்னாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்யநாம்னே கௌரத்திதே நமஹ. குருவே கௌரசந்திராய ராதிகாயை சதாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய சதபக்தாய நமோ. அங்கச்யாமலிம் சதாபிரதிதோ மந்தேகேந்தீவரம் ஜாகுதரோதி சங்கிதம்பரஸ்யந்தாரந்தவாசினம் ஹிலசத்தாமாபிராமோதரம் ராதாஸ்கந்தநிவேசிதே ஜலபுஜம் த்யாயேம் தாமோதரம். பக்த்யா விஹீனாபராதலக்ஷ்யை சித்தாஸ்ய காமாதி தரங்கமத்யை கிருபாமயி ஸ்வாம் சரணம் ப்ரபன்னா ப்ரிந்தே நமஸ்தே சரணாய. யம் ப்ரப்ரஜந்த மந்த்ரே தமபுரீத சிஷ்யம் த்வைபாயனோ விரஹ காத்தரயா ஜுஹாவ புத்ரேதி தன்மயதயா சர்வோபிநேதோ தம் சர்வபூதஹ்ருதயம் முனிமாஹ. தவைவாஸ்மி தவைவாஸ்மி आप लोग सभी कृष्ण तत्व पर कल से दो तीन दिन आप लोग बोलेंगे, सभी लोग प्रस्तुत हो जाएंगे। कल से जिन लोगों ने शुभानंद जी और एक आदमी कोई बोला सकता है ये भी बहुत संक्षेप में बोले थे। कल से हम लोग दो तीन दिन कृष्ण तत्व के संबंध में सब लोगों एक एक करके मैं पूछूंगा और खड़ा कराऊंगा। ये इसमें प्रस्तुत होकर के आप लोग कृष्ण तत्व के संबंध में बोल रहे हैं। कृष्ण तत्व में सभी तत्व आ जाते हैं, कुछ बाकी नहीं रहता। कृष्ण कृष्ण की शक्ति, कृष्ण शक्ति के जितने भी परिणाम स्वरूप हैं जीव जगत सब, उन कृष्ण की छाया शक्ति अर्थात ये जड़ शक्ति और भक्त तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, जीव तत्व सब इसके अंतर्गत आ जाए। इसलिए सब विषयों पर सिंहावलोकन करते हुए, सिंहावलोकन जानते हैं, सिंहावलोकन करते हुए विवेचन करें। सिंहावलोचन माने होता है सिंह एक बार ऐसे नजर घुमा करके देख करके अपना लक्ष्य स्थिर करके फिर वहीं से दौड़ता है, ऐसे सिंहावलोकन। ठीक है, आप लोग प्रस्तुत रहेंगे। ठीक ठीक बृहद भगवतम एक अलिनक तव जसोखिल लोक तीर्थम गायन्ति आदि पुरुषानुपथम भजन्ति प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़म बनेति न जहात अनघात वदैवम्। हमारे प्रसिद्ध महाराज जी गोपी भाव में आविष्ट होकर अपनी मैया जी को, मैया को रसायन का पाठ कर रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। इस श्लोक में पहले श्लोक में बनल लता सर्व आत्मनि विष्णु व्यंजन्ते इव पुष्प फलाध्याय। इस श्लोक में लता और वृक्षों की कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का वर्णन किया। जब लताओं की और वृक्षों की ही कृष्ण की कार सुंदर सौंदर्य और उनके वेणु मधुर वेणु ध्वनि को सुनकर लोगों की ऐसी दशा हो जाती है, वो अष्टसात्विक भावों से विकारों से परिपूरित हो जाते हैं और अपने हाथों में उपहार लेकर अपना प्रिय से प्रिय धन कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देते हैं। तो फिर उससे जो वो तो जड़ के समान फिर उससे श्रेष्ठ क्रमशः श्रेष्ठ वस्तुओं का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात विशेष करके समझना चाहिए, प्रेम के दो पहलू हैं। प्रेम के दो पहलू, एक है मिलन, दूसरा विरह, एक संभोग और दूसरा विप्रलंब। दोनों प्रेम के ही विचार हैं। एक सिक्के के दो पहलू जैसे एक ही वस्तु प्रेम, उसके दो स्वरूप हैं। संसारिक लोगों में विभाव के अंतर्गत ये अवलंबन और अवलंबन में भी दो विषय और आशय का अवलंबन और उनके उद्दीपन भावों के द्वारा जो आनंद अथवा दुख होता है इस जगत में, उसमें मृत्यु भी हो जाती है, एक दूसरे को मार भी दे सकते हैं विरह में। लैला मजनू इत्यादि का प्रेम, ये प्रेम नहीं, ये काम है। इसे इस जगत में कभी भी प्रेम नहीं संभव है, किंतु उस जगत में प्रेम किनमें सच्चिदानंद घन होता है। उसमें देखने में दो पहलू, विरह और मिलन, संयोग और वियोग, विप्रलंभ और संभोग, दोनों दो तरह से दिखते हैं, किंतु दोनों में ही सुख आनंद है। इसी चीज को ये पहले श्लोक में श्री सनातन गोस्वामी ने बड़ी सुंदरता के साथ में दिखलाया। इसमें जैसे प्रेम के महान आविर्भाव में मिलन जब होता है उसका कुछ वैशिष्ट्य, जब योग होता है उसका भी अपना वैशिष्ट्य है, किंतु दोनों आनंद है। जगत जैसा दुखपूर्ण नहीं है, किंतु दुख जैसा दिखता है। जैसे साक्षात आविर्भाव में साक्षात मिलन होता है दोनों कृष्ण और का गोपियों से, विरह में भी मन में जो कृष्ण की स्फूर्ति होती है, इसलिए उसमें भी आनंद ही है। बल्कि मिलन में ऊपर से मिलते हैं, भीतर को खो देते हैं, और विरह में संपूर्ण रूप से सर्वत्र जहां भी जाएंगे विरह में वही मिलन होता है। मिलन में एक स्थान पर मिलन होगा, जहां पर मिलन होगा वहीं पर होगा, किंतु विरह में जहां कहीं वो आश्रय जाएगा या जाएगी, जहां जहां भी विरह में वही पर कृष्ण की स्फूर्ति होगी। हम लोगों की जो स्फूर्ति किसी के मिलने के लिए किसी से होता है, जैसे माता का वियोग पुत्र से होने पर माता जो देखती है उसमें दुख होता है, और उसमें कृष्ण आनंद घन है। इसलिए विरह में स्फूर्ति यदि उनकी होती है तो आनंद की भी स्फूर्ति होगी, इसे दुख नहीं। किंतु फिर भी वो दुख ऐसा है दिखाई देता है कि कोटि कोटि संसार के दुखों से भी अधिक, काल कूट से भी अधिक, किंतु है उसमें जैसे जैसे उदाहरण स्वरूप ले ले, आग तो आग है उसमें जलती है, बर्फ का चार ठीक आग के विपरीत, बर्फ को एक टुकड़े को हाथ में ले लो और कुछ क्षणों के बाद में कैसा मालूम होगा, हाथ जल रहा है, जल नहीं रहा है, वो ठंडा की घन मूर्ति है, ठंडा की शीतलता की, किंतु मालूम होता है कि वो हाथ गल गया, हाथ है ही नहीं है, हाथ शून्य हो गया, किंतु है वो शीतलता, वैसे ही वो घन आनंद कृष्ण है। इसलिए उनकी स्फूर्ति होने पर जहाँ कहीं वो आश्रय रहेगा उस कृष्ण की स्फूर्ति होने से वो घन आनंद स्वरूप वो कृष्ण की ही जैसा आनंद वो देगा। यदि यह प्रश्न हो कि विरह में स्फूर्ति या आविर्भाव, स्फूर्ति और आविर्भाव, स्फूर्ति एक चीज है और आविर्भाव एक है, जैसे चैतन्य महाप्रभु की मैया अपने बेटे की चिंता कर रही है कि आज सुंदर सुंदर हमने पकवान बनाए हैं, तो उस समय कृष्ण क्या करते, महाप्रभु जी क्या करते थे, जट आविर्भूत हो जाते थे, ये आविर्भूत आविर्भाव वहां पर स्वयं आ जाते थे, उस स्फूर्ति कहते हैं किसको, कृष्ण नहीं आए या महाप्रभु जी नहीं आए, किंतु स्फूर्ति होती है जो आ गए, जैसे गोपियां बैठी हैं वृंदावन में नंदगांव के उद्धव क्यारी में बैठी हैं और चिंतन कर रही हैं, इतने में किसी गोपी ने तमाल वृक्ष को देखा और कृष्ण समझकर जब आलिंगन किया, इतने में एक दूसरी गोपी ने ये क्या कर रही है, क्या तू कर रही, तो कृष्ण से मिल रही है, तो कृष्ण कहाँ है, अरे ये तो पेड़ है, तो सचमुच दिखा रही है तो पेड़, यह है स्फूर्ति। जैसे किसी पेड़ को देखा वहां पर कृष्ण की स्फूर्ति, पर्वत को देखा ये गोवर्धन की स्फूर्ति, नदी देखा कालिंदी की स्फूर्ति, ये स्फूर्ति है। और कभी कभी कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण का आविर्भाव वहां होता है, कृष्ण उनके आंखों को पोछ कर उन्हें प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हैं, फिर चले जाते हैं, ये सोचते हैं कि हमको स्फूर्ति है, किंतु ऐसा आविर्भाव और स्फूर्ति में अंतर है। इसलिए स्फूर्ति और आविर्भाव के द्वारा मिलन का आनंद अनुभूत होता है, यह बात सत्य है। स्फूर्ति में भी कृष्ण नहीं है किंतु स्फूर्ति हुई और अभिभूत हुए उसमें भी मिलन हुआ और सचमुच में साक्षात साक्षात हैं उनसे मिलन, ये तीनों में तो मिलन जैसा आनंद होगा, है किंतु एक स्फूर्ति एक आविर्भाव। किंतु यह स्फूर्ति जब भी चली जाएगी या आविर्भाव तिरोहित हो गया, तिरोहित माने क्या, अंतर्हित हो गया और स्फूर्ति भी समाप्त हुई तो हाय 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 करते रहने लगेंगे, दुख होगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु को रात में बंसी ध्वनि सुनाई पड़ी और वे बंसी ध्वनि की खोज में तीनों फाटकों को पार कर, प्राचीरों को पार कर जगन्नाथ वल्लभ वाटिका में उपस्थित हो गए और उपस्थित होकर के मूर्छित होकर के पड़े हैं, ये लोग रात भर खोजते 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 लालसेन और ये सब लेकर के वहां पर पहुंचे, खोजते खोजते वहां पर मिले, इन्होंने उन्हें होश कराया किंतु होश हुआ नहीं, अर्थ बाह्य अवस्था हुई। आज बाह्य अवस्था में बतलाए तुम लोग हमें क्यों ले आए, मैं तुमसे मिलन हमारा हो रहा था, मैं उनकी सेवा कर रही थी, जगन्नाथ जी के मंदिर में आते आते कुछ होश और उसकी आया, सब वो डकर डकर करते रोने लग गए, कि हमने क्या देखा, हमने कुछ प्रलाप बक रहा था न क्या कर रहा था। तो कहते हैं कि ये आविर्भाव साक्षात मिलन की बात छोड़ दो, विरह में स्फूर्ति या आविर्भाव हुआ और वो तिरोहित दोनों हो गए, तो उस समय तो दुष्टा पीड़ा होती है जैसे महाप्रभु जी को पीड़ा होती थी, उन गोपियों को भी वैसे ही पीड़ा होती थी, क्योंकि राधा जी के भाव को लेकर के महाप्रभु जी आए हैं। होगी या नहीं, इसके उत्तर में कहते हैं प्राकृत जो विभाव हैं, प्राकृत विभाव माने क्या, आलंबन, विषयालंबन और अक्षय अवलंबन। विषयालंबन कौन है, कृष्ण, अक्षय अवलंबन गोपियां। अथवा कभी यदि कृष्ण अक्षय अवलंबन हो जाएंगे तो गोपियां हो जाएंगी विषय अवलंबन, ये दोनों। यदि गोपियां उनका चिंतन कर रही हैं तो आश्रय, और कृष्ण यदि इनका चिंतन कर रहे हैं तो वो हो जाएंगे आश्रय, नहीं आश्रय तो वो तो सुख तो होगा, तो उसके लिए बतला रहे हैं। ये स्फूर्ति और आविर्भाव यदि तुरोहित हो गया, दूर हो गया, तो दूसरा भी पीड़ा होगी, हाँ होगी, ये बात तो ठीक है। उत्तर यही, ये किस लिए बतला रहे हैं, सनातन गोस्वामी ने यहाँ पर कहा प्रेम रसिका अर्थात प्रेम तत्प्रेम विदग्धा, गोपियों के गोपियों का सुख ले सही वह उदय संभावना की। जब गोपियां कृष्ण के विरह में रो रही हैं तो ये कौन कह रहा है कि उनको आनंद होता है, कौन कह रहा है, नारदादि ऋषि कह रहे हैं। कोई गोपी कहेगी ये बड़ी सुख से है, यशोदा मैया बड़ी सुख से है, कृष्ण के विरह में उनका मिलन हो रहा है, आविर्भाव हो रहा है, कहेंगी ब्रज का कोई, आप सभी रोएंगे, किंतु तत्स्थ रूप में तत्व का जो विचार कर रहे हैं उनके लिए आनंद है। इतनी ऊपर में गोपी है, ये सनातन गोस्वामी का विचार, जब तत्व से विचार करते हैं तो आनंद ही आनंद, विरह भी आनंद है, बल्कि मिलन से अधिक आनंद है, इसी चीज को देख रहा है। ये मिलन में थोड़ा सा मिलन होता है, इसके बाद में विरह आ जाता है, वियोग, और वियोग में जब तक वियोग रहेगा जहां भी जाए वहीं पर कृष्ण नहीं है, किंतु उनका आनंद घन कृष्ण से भीतर भीतर में मिलन होता है। किंतु ये तत्व से कहने वाले जो तात्विक लोग हैं, तत्वविद लोग वो कहें, रसिक जो है ये नहीं, ब्रजवासी नहीं ऐसा, कोई भी ब्रजवासी नहीं कहेगा, जैसे हे यशोदा जी, हे नंद बाबा, और हे गोपियां, आप लोग परम धन्य हैं, आप लोग परम सौभाग्यवान हैं, तो नंद बाबा रोएंगे, यशोदा जी रोएंगी, गोपियां रोएंगी। देखो तो हम लोग को ये दुखी बतला रहे, संसार में यदि दुखी हैं तो हमसे पढ़कर कर कोई दुखी नहीं है, कृष्ण से मिल करके और हमें इतना वियोग हो गया, हमें हम जैसा कोई दुर्भागा और दुखी नहीं है, इसी चीज को यहाँ पर कहा है। किंतु जे हेतु अप्राकृत अवलंबन मिलने जे रूप सच्चिदानंद घन, मैं इसको बतला रहा हूँ, कृष्ण सच्चिदानंद घन, इसलिए इनकी स्फूर्ति या आविर्भाव भी परमानंद में है, ये बात तो ठीक है। किंतु गोपियां अपने विरह में जरूर दुखी हैं, किंतु तात्विक लोग जो तत्व से जानने वाले हैं इस चीज को, इसे चिंता करते थे इसको कभी यदि जो देखते तो विषय अंतर इसी से मिलते तुम्हारे नृत्य यदि जो सुनते दिखते आते तुम भीतर भीतर। किंतु विरह में बाहर में संताप होने के कारण अधिक से अधिक परिमाण में परिपाक में आनंद की अनुभूति, परिपक्व आनंद की अनुभूति है, उद्धव जी कहेंगे, उनके गुरु जी नारद जी कहेंगे, गर्गाचार्य जी ऐसा कह सकते हैं, किंतु ब्रज का कोई भी यहाँ तक कि साधक भक्त लोग भी जो रूपानुभव है वो नहीं कहेंगे, और कितो बात क्या है। प्रबोधानंद सरस्वती नहीं कहेंगे। कहते हैं कि विरह में बहिर इंद्रिया और अंतर इंद्रिया ये सब की क्रियाओं को वह आनंद रोक देता है, इतना आनंद होता है, इसलिए उनकी मूर्छा हो जाती है। मूर्छा माने क्या? उस दिन में आनंद में, आनंद घन में एकदम रह जाते हैं। बस आनंद भोग की क्रिया रहती है। नासो रमणी, नासो रमन, दोनों मनोभाव से खल ज्ञानी। उस समय में मैं हूँ, रमण कृष्ण, ये सब भाव नहीं रहता, बस आनंद रहता है, बस उसी को यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए इस विरह को भी उस रूप में महान सुख बतलाया, किंतु अधिकारी भेजते ये विचार ब्रजवासियों को नहीं, सब सभ्यताओं को इस रूप में सत्यता लोग विचार करते हैं। एते अनिल सबजसो अखिल लोक तीर्थम गायंत आदि पुरुषा अनुपथम भजन्ते। कृष्ण कह रहे हैं गोचारण में, बलदेव जी और कोटि कोटि गायें एक पन से दूसरे पन में प्रवेश कर रही हैं। कृष्ण वृंदावन की शोभा देकर के और बलदेव जी से कह रहे हैं, एते अनिला, ये जो अनिल भ्रमर है, ये मुनिगण है, अमी मुनिगण, ये मुनिगण है। कौन से मुनिगण? ब्रह्मवादी मुनि नहीं, संकीर्तन करने वाले, नित्य करने वाले मुनि लोग हैं। कैसे मुनि? नारद ऋषि, नारद जी जैसे लोग, ऐसे लोग मुनि। ये काले कृष्ण की तरह काले हैं, इसलिए कृष्ण से परम अनुरक्त हैं। कृष्ण माने, किंतु ये अवहित्था अवलंबन करके बलदेव जी के लिए लगा रहे हैं सब कुछ, अपने भावों को गोपर कर राम के लिए, बलदेव जी के लिए ये सब कुछ कह रहे हैं। तब अखिल जसो जसो अखिल लोक तीर्थम, ये भौरे सब लोगों को पवित्र करने वाले अत्यंत सुंदर जस आपका जस दान कर रहे हैं। अखिल लोगों के लिए ये तीर्थ स्वरूप है। क्या चीज इनका यह जो गान है? अखिल लोगों को पवित्र करने वाला है। वंदे नंद ब्रजेशीनंद पाद रेणु अभिक्षण सा जसा जासंग हरिकुठो दीत बोनों को पवित्र करने वाली। किनकी कथा? गोपियों की। यहाँ पर उसको फिर से कह रहे हैं, ये अनिल जो भ्रमर हैं आपके अखिल लोक तीर्थ स्वरूप आपका जसोगान करके त्रिभुवन को तारण कर देते हैं, तार देते हैं। ये आपके संग संग में चल रहे हैं, क्षण क्षण के लिए भी आपका संग नहीं प्रत्याय कर। निश्चय यहाँ पे श्रेष्ठ भक्त मुनिगण है, ये तो निश्चय। और आगे वर्णन करेंगे, अभी तो साधारण अर्थ बता रहे हैं। ये साधारण मुनि नहीं है, ये तो कोई आपके परम भक्त सिद्ध कोई ये भक्त लोग हैं, प्रेमी भक्त होंगे। यदि आप वन में गुरु रूप से बाल्य पीड़ा करते हुए अपने प्रभाव को छिपाकर, अपने षड़ैश्वर्य को छिपाकर, साधारण एक बालक की भांति आप महत की चाल चल रहे हैं, बंदर की पूछ पकड़ करके इधर चल रहे हैं, सिदाम इत्यादि के साथ में लड़ झगड़ रहे हैं, क्रीड़ाओं को कर रहे हैं, बैल कभी बन रहे हैं, कभी घोड़े बन करके कृष्ण को चढ़ाते हैं, कभी कृष्ण को घोड़े या सुभद्र को, मंडली भद्र को घोड़े को बनाते, सिदाम को नहीं। ये तो जरा उम्र में बलदेव जी के बराबर है, इसलिए उनके और सुबल इत्यादि जो हैं ये कुछ कृष्ण पक्षी हैं। इसलिए बाल्य श्री राम में मत्त होकर के अपने को छिपा रहे हैं बलदेव प्रभु जी, तो भी आपको इन्होंने पहचान लिया है, इन भौरों ने पहचान लिया है और आपका संग प्रत्याग नहीं कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी क्रमश ये वर्णन कर रहे हैं, उत्तरोत्तर उत्कर्ष युक्त वर्णन कर रहे हैं। पिछले में उन्होंने खावर वृक्ष और लताओं का वर्णन किया कृष्ण के प्रति अनुराग। जब वृक्ष और लताओं का कृष्ण के प्रति ऐसा उद्दाम उच्छलित प्रेम है तो ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की क्या जो जंगम है चलने वाले, इनकी क्या दशा होगी, इनसे ये श्रेष्ठ है। वृक्ष लता कृष्ण और बलदेव जी के साथ साथ में नहीं जा सकते, किंतु ये जहाँ उतर से जाएंगे उनकी वनमाला पर बैठते हुए ये जाएंगे गुंजार करेंगे। वन लता वृक्ष गान नहीं करेंगे, नृत्य नहीं करेंगे, और ये नृत्य करेंगे, गान करेंगे, गुणगान करेंगे। इसलिए उनसे ये छोटे से मकोड़े होने पर भी उनसे श्रेष्ठ हैं। सब इनकी महिमा का मैं क्या वर्णन करूँ, सभी मैं वर्णन कर रहा हूँ। इस तरह से परीक्षित महाराज जी अपनी मैया से कह रहे हैं और इधर सनातन गोस्वामी हम लोगों को ये बतला रहे हैं, उधर में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को बतला रहे हैं, सुख गोस्वामी जी सोनों का भी ऋषियों को ये बतला रहे हैं। उत्तरोत्तर जो श्रेष्ठ हैं, जैसे इनमें श्रेष्ठ श्रोता कौन है, इसमें सुत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषि से ये सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित जरूर से, और इधर गोपी भाव परीक्षित परीक्षित महाराज और उत्तरा मैया को जो बतला रहे वो भी वैसे ही है। श्रेष्ठता का निरूपण कौन से है, निरूपण करना बड़ा भारी कठिन है। तो ये जंगम से श्रेष्ठ हैं कौन, भौर है। भौरों को कहा गया कामदेव का शंख बजाते हैं। सबसे पहले निशांत में रात्रि के अंत होने पर सबसे पहले ये जगते हैं। कैसे जगते हैं, इनको जगाने वाला कौन है, सुंदर सुंदर फूलों की सुगंध हवा से मिश्रित होकर के उनके नाकों में जाकर के उनको जगा देती है, वो जग जाते हैं और शंख बजाने लगते हैं, ये उठिए उठिए। तो ये भौरे जंगमों में जो चलने वाले हैं उनमें भी प्रथमतः कीटों का महत्व वर्णन कर रहे हैं, और इसके बाद में कीटों के बाद में और चलने वाले मृगों की, हरिणियों की, और हरिणियों से भी श्रेष्ठ गायों की, ये सब क्रम से वर्णन कर गायों और बच्चों। पूर्ववत भगवान श्री कृष्ण अपने अग्रज बलदाम जी को बलदेव जी को लक्ष्य करके महात्मा वर्णन कर रहे हैं किसका, वृंदावन का, वृंदावन का महात्मा और अपना ही महात्मा वर्णन कर रहे हैं। ये प्रमर्श गुंजन के छल से आपके अखिल लोक तीर्थ जसों का गान कर रहे हैं, गुणों का गान कर रहे हैं। भुवन मोहन भुवन पावन जस गान कर रहे हैं। भुवन पावन में भुवन को पवित्र करने वाला, भुवन माने माया के द्वारा आबद्ध जगत, इनके ये लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं संसारी कष्टों से, केवल मात्र भगवान की कथा सुनने से ये पवित्र हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हरि कथा श्रवण का महत्व बतलाया गया, और सनातन गोस्वामी ने इस अध्याय के प्रारंभ में न जाने कितने श्लोकों का उदाहरण देते हुए श्रवण का, और श्रवण जो करता है श्रवण कराता है उसका महिमा उन्होंने जाना। इसलिए बतलाया इस श्लोक में, यदि श्रवण में रुचि नहीं, भगवान की लीला कथाओं के श्रवण में रुचि नहीं हुई तो पंडस्तम ये सब क्या है श्लोक? हाँ यदि भगवान की लीला कथा में रुचि नहीं है और स्वाहा स्वाहा में खूब रुचि है और गोवर्धन की परिक्रमा में खूब रुचि है और अब ये तीन दिन उत्सव हुआ नगर संघ के समय पांच हाथ ऊपर उठ रहे हैं, पुलिस वाले दंग रह गए इनका नृत्य देखकर। पुलिस वाले कहते हैं कि हम लोग खाली हाथ सवेरे का मॉर्निंग में जो हम लोग जो कवायद करते हैं उसमें इतना उछल नहीं पाते, ये मृदंग और करताल लेकर के इतना उछल रहे हैं। वो कह रहे थे किंतु इतना उछल सकते हैं किंतु जहाँ यहाँ आए हरि कथा आरंभ हुई तब वो कितनी शक्ति शक्ति तब चली जाती कहते हैं सब कुछ करो करते हैं किंतु भगवान की लीला कथाओं के सुनने में यदि रुचि नहीं है तब पंडित से इसम क्यों हरिनाम में अभी जो रुचि देखती है वो लोगों को दिखलाने के लिए रुचि होती है, वो दिखलाने के लिए जहाँ आदमी चले जाएंगे हरिनाम की माला भी बंद हो जाएगी। एक लाख दो लाख हरिनाम करते हैं और हरि कथा में रुचि नहीं हुई तो ये समझो कुछ दिनों के बाद में वह नाम छूट जाएगा, नहीं होगा। और हरि कथा के द्वारा सिद्धांत का ज्ञान होगा और सिद्धांत के ज्ञान होने से वह हरिनाम में जो रुचि होगी वह रुचि आसक्ति और भाव तक ले करके वो रस में चारा उपोर कर देगी। इसलिए कहा गया तन्नाम रूप चरितादि सुकृत नाम क्रमीण रसनाम मनसी नियोज्य। भाई रसना के द्वारा भगवान का नाम मन के द्वारा चिंतन वो कैसे? पहले गुरु मुख से वैष्णव के मुख से श्रवण अनंतर अनुसुनियात यह अनुसुनियात माने क्या? निरंतर नहीं अनुगत में श्रवण के अनंतर परिपाक होने के बाद में जो हरिनाम होता है वो कभी नहीं। और वहां पर जो सप्त जीवा युक्त जो नाम की जो महिमा बतलाई गई क्या अंतिम वाला था सर्वात्म विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम वो किस नाम के लिए कहा गया है? घेटू मेटू वाला और काशी काना वाला नाम के लिए नहीं कहा गया, कहा गया संबंध युक्त होकर अनर्थ निवृत्ति के पश्चात और संबंध युक्त होकर स्वरूप की अनुभूति करके और सब जब नाम करेंगे तो ये साथ होंगे। अनर्थ निवृत्ति भक्ति विनोद ठाकुर ने इसकी टीका में पहले बतलाया जब तक सारे अनर्थ हैं और अनर्थ से गदगद होकर प्रीति रहित होकर संबंध ज्ञान रहित होकर जो नाम करते हैं उसके द्वारा ये नहीं होगा। गुरु के द्वारा दीक्षा शिक्षा और विसंभ सेवा के पश्चात क्रमशः अनर्थ निवृत्ति होने लग जाएगी जब उस समय में संबंध ज्ञान से युक्त जो हरि नाम होगा उसके द्वारा ये सप्त जीवित नाम की पूर्ति होगी अन्यथा नहीं। इसलिए विजयते वो आराध्य है किंतु ये भी समझो भगवान की कथा भी आराध्य है। जैसे नाम और नामी अभिन्न है भगवान की कथा और भगवान भी अभिन्न। इसलिए नाम में यदि रुचि नहीं है यदि हरि कथाओं के श्रवण में रुचि नहीं है तो नाम में भी रुचि नहीं आएगी। और जहाँ हरि कथा के श्रवण में आई सिद्धांत का ज्ञान हुआ नाम की महिमा का ज्ञान हुआ समझे इसके बाद में जो नाम करेंगे वो सेवा करते हैं हरि कथा में रुचि नहीं है दो दिन फिर अंधेरी रात जब भी वैभव है गुरु जी में वैभव दिखला रहे हैं तब तक खूब आदर है गुरु जी के प्रति उनका पॉकेट भारी है पैसे के द्वारा और वैभव हो रहा देख रहे हैं तब तक खूब आदर है। और जब देखेंगे वैभव कुछ नहीं तो हरि कथा नहीं रहेगी तो फिर गुरु के प्रति श्रद्धा भी कम जाएगी बच्चों के प्रति श्रद्धा कम जाएगी और सारा साधन चौपट हो जाएगा। इसलिए श्रवणम तब कीर्तनम तब स्मरणम, ये पद्धति है, इसलिए इसको कह रहे हैं। इनका यह जो गान है, इन तीन का गान है अनिल, ये अनिल कौन है? भ्रमर।
Thank you. Thank you.